अगली सुबह जब सानवी की आंख खुली तो उसने देखा कि जय और आर्यन दोनों उसी के पास सो रहे थे। वो दृश्य देखकर उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। दिल भर आया। जहां जय से उसे माँ सा प्यार महसूस हुआ, वहीं आर्यन की मौजूदगी उसे एक अजीब सी सुकून भरी सुरक्षा दे रही थी। वो धीरे से उठी ताकि दोनों की नींद ना टूटे, लेकिन जैसे ही वो पलटी आर्यन की आंख खुल गई। सुबह हो गई, आर्यन ने उनींदी आवाज में पूछा। हाँ, सानवी मुस्कुराई, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। सानवी किचन चली गई। उसने दोनों के लिए चाय बनाई। थोड़ी देर बाद जब वे चाय पी रहे थे तो सानवी ने झिझकते हुए कहा, आप यहीं क्यों सो गए थे? ऊपर चले जाते, जगह तो बहुत कम थी, आपको मुश्किल हुई होगी। आर्यन मुस्कुराया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वैसे भी तुम दोनों के साथ सोना मुझे अच्छा लगता है। फिर उसने जल्दी से बात संभाली, मेरा मतलब जय के साथ। सानवी हल्का सा हंसती। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना पसंद था, मगर फिर भी दोनों पास होते हुए भी दूर थे। चाय के बाद आर्यन और सानवी तैयार होने चले गए। जय भी उठ चुका था। थोड़ी देर में नैनी जैकी आने वाली थी। आज वो थोड़ी लेट थी, वरना पिछले दो दिनों से तो वो सुबह सुबह ही आ जाती थी, क्योंकि आर्यन और सानवी दोनों को काम पर जाना होता था और जय को देखने के लिए किसी का होना जरूरी था। सानवी ने जय को तैयार किया, फिर उसे ड्राइवर राम के साथ भेज दिया। इसके बाद सानवी आर्यन के साथ निकल पड़ी। आर्यन ने पहले उसे रेस्टोरेंट छोड़ा और फिर खुद ऑफिस के लिए रवाना हो गया। सानवी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कुछ पल तक उसे जाता हुआ देखती रही। दिल में न जाने क्यों एक अजीब सा भरोसा था, जैसे जिंदगी धीरे धीरे सही मगर सही दिशा में चल रही हो। जब आर्यन ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि इंद्र पहले से ही उसके केबिन में मौजूद था। वो साफ तौर पर परेशान लग रहा था। असल में उसकी चिंता जैसिका को लेकर थी, आखिर वो उसकी सगी बड़ी बहन थी। जैसे ही आर्यन कमरे में दाखिल हुआ, उसने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक काम है, इंद्र ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। हाँ कहो, आर्यन अपनी सीट पर बैठ गया। जो 5% शेयर जगत भाई जैसिका को देना चाहते थे वो तुम दे दो, इंद्र ने कहा। तुम्हारे पास उसके लिए पहले से साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। देखो, इंद्र ने आगे कहा, जय की कस्टडी उन लोगों के हाथ से जा चुकी है। ऊपर से तुमने उन्हें कंपनी से भी निकाल दिया। जैसिका बहुत परेशान है। उसकी आवाज में भाई होने की बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं ऐसा नहीं करने वाला, आर्यन ने बिना हिचक कहा। मैं उन्हें दोबारा कंपनी में घुसते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंद्र चुप नहीं रहा। तुम भूल रहे हो आर्यन, उसने गंभीर लहजे में कहा। तुम लोगों की शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये बात बाहर आ गई तो जय की कस्टडी भी तुम लोगों के हाथ से निकल जाएगी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मुझे सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है, इंद्र ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा। मेरा कोई और इरादा नहीं है, बस मेरी बात मान लो। आर्यन कुछ पल चुप रहा। वो हालात की नज़ाकत समझ रहा था। उसे ये भी पता था कि जय की कस्टडी के मामले में इंद्र ने उनकी मदद की थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली। ठीक है, आर्यन ने कहा, मैं वो 5% शेयर जैसिका को दे दूंगा। इंद्र ने राहत की सांस ली। बिना कुछ और कहे वो वहां से चला गया, लेकिन आर्यन वहीं बैठा रहा, ये जानता हुआ कि उसने आज एक ऐसा फैसला लिया है जिसके नतीजे आगे बहुत भारी पड़ सकते हैं। इंद्र के जाने के बाद आर्यन अपनी कुर्सी पर ही बैठा रह गया। दिमाग में लगातार वही बातें घूम रही थी, शेयर जैसिका, जय की कस्टडी और वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जो बाहर आई तो सब कुछ बिखर सकता था। तभी उसका फोन बजा। अनजान नहीं था, ये उसी आदमी का फोन था, जमाल, जिसे उसने विक्रांत के पीछे लगाया था। जमाल अब उनके गैंग में शामिल हो चुका था, अंदर तक घुस चुका था। हाँ कहो, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। मुझे आपसे मिलना है, जमाल ने जल्दी जल्दी कहा, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। मैं आ रहा हूँ, जमाल ने मिलने की जगह बता दी। कॉल कट होते ही आर्यन उठ खड़ा हुआ। उसे अंदाजा था अगर जमाल खुद मिलने की बात कर रहा है तो मामला छोटा नहीं होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस समय जमाल फोन पर बात कर रहा था, जीवन पास ही मौजूद था। जीवन ने पूरी बातचीत तो नहीं सुनी, मगर इतना समझ गया कि जमाल किसी बड़े प्लान की ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में शक उतर आया। ये आदमी कुछ ना कुछ जरूर करने वाला है, जीवन ने मन ही मन सोचा, और यहीं से खेल और खतरनाक होने वाला था, क्योंकि अब सिर्फ आर्यन नहीं, जीवन भी जमाल पर नजर रखने लगा था। आर्यन ऑफिस से बाहर निकला। गाड़ी में बैठते ही उसने ड्राइवर को वही पता बताया जहां जमाल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसका मन बेचैन था, दिल कह रहा था कि आज कुछ बड़ा सामने आने वाला है। उधर उसी वक्त रेस्टोरेंट में सानवी कुर्सी पर बैठी हुई थी, चेहरे पर चिंता साफ छलक रही थी। अब वक्त लगभग खत्म हो चुका था, बैंक की इंस्टॉलमेंट की तारीख आ चुकी थी। अब हमें क्या करना चाहिए, कैमल ने बेचैनी से कहा। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, रिया भी वहीं बैठी थी। तीनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद सानवी ने कहा, मैं समझ नहीं पा रही, इतना सब अचानक कैसे आ गया। कैमल ने धीरे से कहा, एक काम करो, तुम उनसे बात कर लो। किससे, सानवी ने चौंक कर पूछा। आर्यन से, कैमल बोली, वो तुम्हारा हस्बैंड है, इस रेस्टोरेंट का भी हिस्सेदार है, वो जरूर मदद करेगा और पैसे की उसे कोई दिक्कत भी नहीं है। रिया ने भी हामी भरी। हाँ सानवी, आर्यन हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन सानवी ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, उसने साफ कहा, मैंने ये रेस्टोरेंट इसीलिए नहीं खोला था कि मुझे किसी से मदद मांगनी पड़े। मैं कोई और तरीका सोचूंगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी कैमल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, तरीका तो एक है। कैसा तरीका? सानवी ने पूछा। एक आदमी है, कैमल ने आवाज धीमी कर ली, जो ब्याज पर पैसे देता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। सानवी की भौहें तन गईं। क्या तुमने कभी उससे पैसे लिए हैं? उसने सीधे पूछा। हाँ, कैमल ने सिर झुकाकर कहा, बस पैसे वक्त पर इंस्टॉलमेंट में वापस करने पड़ते हैं। सानवी चुप हो गई। उसे अंदाजा था ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन शायद यही आखिरी रास्ता भी था। और यहीं उसी वक्त एक तरफ आर्यन जमाल से मिलने जा रहा था और दूसरी तरफ सानवी एक ऐसे फैसले के करीब पहुंच रही थी जो उसे बहुत गहरे दलदल में खींच सकता था। तो ठीक है, सानवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हम पैसे उसी से ले लेते हैं। मैं अभी उसे फोन करती हूँ, कैमल ने कहा और नंबर मिलाने लगी। उसी पल सानवी के फोन पर आर्यन का कॉल आ गया। सानवी, आर्यन की आवाज थोड़ी जल्दी में थी, अभी जय के स्कूल से उसकी टीचर का फोन आया है, उन्होंने हमें बुलाया है। मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तुम चली जाओ। सानवी का माथा और सिकुड़ गया। लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं है आर्यन, उसने कहा। तो ऐसा करो, आर्यन ने तुरंत कहा, ड्राइवर राम को भेज दो, उसकी टीचर से हम बाद में मिल लेंगे। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सानवी कुछ सेकंड फोन को देखती रही, वो साफ परेशान हो गई थी। क्या हुआ? कैमल ने पूछा। सानवी ने झुंझलाकर कहा, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। फिर वो अचानक खड़ी हो गई। मैं खुद जा रही हूँ जैके स्कूल। अभी? रिया चौंकी। हाँ, सानवी ने बैग उठाते हुए कहा, स्कूल से कॉल आई है। छोटे बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ एक ड्राइवर पर नहीं छोड़ी जा सकती। काम, पैसे, परेशानी सब अपनी जगह थे, लेकिन जय सबसे पहले था। सानवी बिना एक पल गंवाए स्कूल के लिए निकल गई। जमाल ऑटो में बैठा आर्यन से मिलने की जगह की तरफ जा रहा था। दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। बार बार उसकी नजर पीछे जा रही थी, हर मोड़ पर, हर सिग्नल पर। पीछे वही गाड़ी, काली रंग की, ज्यादा दूर नहीं लेकिन बहुत पास भी नहीं। जमाल ने एक बार सोचा शायद वो वहम कर रहा है।
प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं।